प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें पृथ्वी पर सबसे प्रारंभिक माना जाता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही झिल्ली होती है और इसलिए सभी प्रतिक्रियाएं साइटोप्लाज्म के भीतर होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका परिभाषा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक और झिल्लीबद्ध अंग नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें पृथ्वी पर सबसे प्रारंभिक माना जाता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही झिल्ली होती है और इसलिए सभी प्रतिक्रियाएं साइटोप्लाज्म के भीतर होती हैं। वे स्वतंत्र जीवन जीने वाले या परजीवी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। उनमें परमाणु झिल्ली का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम अनुपस्थित हैं। आनुवंशिक सामग्री एक ही गुणसूत्र पर मौजूद होती है। यूकेरियोटिक गुणसूत्रों के महत्वपूर्ण घटक हिस्टोन प्रोटीन की उनमें कमी है। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली श्वसन एंजाइमों को ले जाने वाली माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के रूप में कार्य करती है। वे द्विआधारी विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से विभाजित होते हैं। प्रजनन की लैंगिक विधि में संयुग्मन शामिल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। हालांकि आनुवंशिक सामग्री साइटोप्लाज्म के एक क्षेत्र में मौजूद होती है जिसे न्यूक्लियॉइड के रूप में जाना जाता है। वे गोलाकार, छड़ के आकार या सर्पिल हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना इस प्रकार है। कैप्सूल ये कोशिका भित्ति के अलावा जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। यह नमी बनाए रखने में मदद करता है, कोशिका को घेरने पर उसकी रक्षा करता है और कोशिकाओं को पोषक तत्वों और सतहों से जोड़ने में मदद करता है। कोशिका भित्ति यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका को आकार देती है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मुख्य रूप से एंजाइम, लवण, कोशिका अंग से बना होता है और एक जेल जैसा घटक होता है। कोशिका झिल्ली यह परत कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है और कोशिकाओं में पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। पिली ये बाल जैसी वृद्धि है जो अन्य जीवाणु कोशिकाओं की सतह से जुड़ी होती है। कशाभिका ये चाबुक के आकार की लंबी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका की गति में मदद करती हैं। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होते हैं। प्लास्मिड। प्लास्मिड गैर गुणसूत्र डीएनए संरचनाएं हैं। ये प्रजनन में शामिल नहीं है। न्यूक्लियॉइड क्षेत्र ये साइटोप्लाज्म का वो क्षेत्र है जहां आनुवंशिक सामग्री मौजूद होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी जैसे कुछ ऑर्गेनेल का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के घटक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चार मुख्य घटक होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली यह फॉस्फोलिपिड अणुओं का एक बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो कोशिका को आसपास के वातावरण से अलग करता है। साइटोप्लाज्म ये कोशिका के अंदर मौजूद एक जेली जैसा पदार्थ है। इसमें सभी कोशिका अंग निलंबित रहते हैं। डीएनए ये कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। सभी प्रोकैरियोट्स में एक गोलाकार डीएनए होता है। यह निर्देशित करता है कि कोशिका कौन सा प्रोटीन बनाती है। ये कोशिका की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण यही होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिलिया और फ्लैगला होते हैं जो गति में मदद करते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्रजनन। प्रोकैरियोट दो तरह से प्रजनन करता है। द्विआधारी विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से, संयुग्मन द्वारा लैंगिक रूप से। बाइनरी विखंडन किसी जीव का डीएनए प्रतिकृति बनाता है और नई प्रतियां कोशिका झिल्ली से जुड़ जाती हैं। कोशिका भित्ति का आकार बढ़ने लगता है और अंदर की ओर बढ़ने लगती है। फिर प्रत्येक डीएनए के बीच एक कोशिका भित्ति बनाई जाती है जो कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर देती है। पुनर्संयोजन। इस प्रक्रिया में एक बैक्टीरिया के जीन दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये तीन प्रकार से होता है, संयुग्मन, रूपांतरण, पारगमन। संयुग्मन वो प्रक्रिया है जिसमें जीन को दो बैक्टीरिया के बीच एक प्रोटीन ट्यूब संरचना के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है जिसे पायल्स कहा जाता है। परिवर्तन लैंगिक प्रजनन की वो विधि है जिसमें आसपास के वातावरण से डीएनए को जीवाणु कोशिका द्वारा ले लिया जाता है और उसके डीएनए में शामिल कर लिया जाता है। ट्रांसडक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक सामग्री को वायरस की मदद से जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो प्रक्रिया शुरू करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। जीवाणु कोशिकाएं ये एक कोशिकीय जीव हैं जो पृथ्वी पर मिट्टी से लेकर मानव शरीर तक हर जगह पाए जाते हैं। उनकी अलग अलग आकृतियां और संरचनाएं हैं। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है जो कोशिका भित्ति को संरचना प्रदान करती है। बैक्टीरिया में कुछ अनोखी संरचनाएं होती हैं जैसे पिली, फ्लैगला और कैप्सूल। उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे प्लास्मिड के नाम से जाना जाता है। उनमें एंडोस्पोर्स नामक कठोर सुप्त संरचनाएं बनाने की क्षमता होती है जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। परिस्थितियां पुनः अनुकूल होने पर एंडोस्पोर सक्रिय हो जाते हैं। आर्कियल कोशिकाएं आर्क बैक्टीरिया आकार और आकार में बैक्टीरिया के समान एक कोशिकीय जीव हैं। वे चरम वातावरण जैसे गर्म झरनों और अन्य स्थानों जैसे मिट्टी, दलदल और यहां तक कि मनुष्यों के अंदर भी पाए जाते हैं। इनमें एक कोशिका भित्ति और कशाबिका होती है। आर्किया की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। आर्किया की झिल्लियों में पूरी तरह से अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ अलग अलग लिपिड होते हैं। बैक्टीरिया की तरह आर्किया में एक गोलाकार गुणसूत्र होता है। उनके पास प्लास्मिड भी होते हैं। अभ्यास प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के घटक लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे विभाजित होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं?